अब यहां से आगे सूरत फुरकान ही चल रही है, लेकिन 19वां पारा आयत नंबर 21, 19वां पारा। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا, जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को भेजें। छोटा मुंह बड़ी बात, उम्मीद कोई नहीं आखरत की लेकिन मुतालबे बड़े बड़े करते हैं। बड़ा घुमंड ले बैठे हैं ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि पनाह बखुदा, और जो कुछ भी इनका किया धरा है इसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। जो थोड़ी बहुत नेकियां भी की होंगी वो जाया कर दी जाएंगी। कैसे? आप देखिए कि अपने आप को इस नजर से देखिए, इस दुनिया में अल्लाह सुबहान तआला ने जो करने का हुक्म दिया है वो करने की बजाय आप ये पूछने लग जाएं, मेरी मौत के वह कौन सा फरिश्ता आएगा, मुझे किस तरह पकड़ेगा, हाय जब मेरी मौत आएगी तो मुझे कफन कैसे पहनाएंगे, हाय मेरा तो सांस घुटेगा, हाय मुझे गुसल देंगे तो मुझे तो बहुत तकलीफ होगी। भाई आज काम कीजिए। बहुत सारे लोगों का मसला क्या होता है कि आज की नेकी उनको नजर कोई नहीं आती और आने वाले कल के गमों में अपनी आज की खुशियां भी जाया कर देते हैं। और ये असल में वो लोग थे जो अल्लाह के नबी के पास आके कहते थे फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। याद रखिए नबी का बशर या फरिश्ता होना शुरू से ही इशू रहा, मक्का के लोगों को भी यही था कि आप नूर हैं या बशर हैं। ऐसी चीजों में शैतान डालकर लोगों को किस चीज पे माइल करता है, अमल से दूर करता है। भाई अमल कीजिए, अल्लाह ने आपको अमल के लिए भेजा है। लेकिन याद रखिए कि यहां मौत के दिन की बात बताई कि ये बड़ी बुरी, इससे क्या पता चलता है कुफर के साथ जो नेकियां भी की होंगी अल्लाह ताला उसको क्या कर देगा, हवा में उड़ा देगा। हवा मंसूरा, अल्लाह ताला हमें जाया होने से बचा दे। इसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं इस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मुकाम पाएंगे। क़यामत का दिन आपने फरमाया कि जन्नती दोपहर का खाना जन्नत में जाकर खाएंगे। कैलूले की जगह, यहाँ कैलूले की बात है, अहसनु मकीला। सारी जिंदगी अल्लाह के कहने पे बात मानी, अल्लाह इंतजार नहीं कराएगा, ज्यादा देर नहीं वहां रुकवाएगा, बल्कि क्या कहा, थोड़ी देर में तुम्हें ले जाऊंगा। और जो दूसरे वो पीछे हिसाब किताब में तुलवा रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी लाइनें होंगी। कभी गर्मियों की दोपहर में किसी जगह गए उस वक्त को सोचिए, आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमोदार होगा। क्यामत का मंजर, और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी, और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपने हाथ चबाएगा और कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त न बनाया होता। इसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत न मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। ये तो है जालिम की बात। अब रसूल की बात सुनिए, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमि इत्तखज़ू हासल कुरआन महजूरा। और रसूल कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को पकड़ कर भी छोड़ा हुआ था, यानी मजाक बना रखा था। ये है आज के पारे की आयत तदब्बुर। एक और भी आएगी लेकिन एक ये भी है। इस वाले पारे में आप देखेंगे बुरी दोस्तियों के नुकसान, कैसे दोस्तियां कुरान के करीब करती हैं और कैसे दूर ले जाती हैं। नबी सल्लम के दौर में एक शख्स था, करीब था कि मुसलमान हो जाए, और एक वाक्या है तवील जिसका एंड क्या है कि बिल आखिर उसने कलमा पढ़ लिया। जब कलमा पढ़ा तो उसके एक करीबी दोस्त ने उसको आर दिलाई कि तूने मोहम्मद के नाम का कलमा क्यों पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुझसे उस वक्त तक खुश नहीं हूं, मैं तेरे घर का खाना नहीं खाऊंगा जब तक तू जाकर मोहम्मद के मुंह पर थूक ना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में कहें आप भी, और उस जालिम ने ये कर दिया, उसी पे आयतें उतरी। जरा सा सोचिए इस एक आयत पे, अपनी दोस्तियों को हम भी देखें। आज के हमारे पारे की जो टाइम मैनेजमेंट टिप है वो भी यही है कि अपनी दोस्तों के साथ जब होती हूँ तो मेरे ईमान का क्या लेवल होता है। اپنی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کرتی. کبھی ایک دوست ہوتی ہے, کبھی بہت ساری دوستیں ہوتی ہیں, جس کو آپ اپنا سرکل کہہ لیجئے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو امید تو نبی کی شفاعت کی تھی, یہاں کیا ہو رہا ہے, سفارش کی بجائے شکایت لگ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو پکڑنا اور پھر چھوڑنا یہ کیا ہوتا ہے. اس میں ایک دو تین منٹ کا کلپ ہے, اگر آپ کو ساتھی بھیج سکیں تو ضرور بھیجیں گے. دو تین منٹ میں صرف اس ایک آیت پہ آج کی بات کی تھی کہ پکڑ کر چھوڑنا کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں بس آج اتنی سی بات سمجھ لیجئے, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو پکڑنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ اس پر ایمان ہی نہ لانا اور اس کو سننا ہی نہ, یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے, ایمان تو لے آئے, سنتے بھی ہیں, غور نہیں کرتے. تیسری بات, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ اسٹیپ سارے ذہن میں لے آئے. جس نے جس درجے پہ قرآن کا ایک حق چھوڑا, اس نے قرآن کو پکڑ کے چھوڑا. اور کہتے ہیں کہ ایک درجہ یہ ہے کہ پھر اس پہ عمل نہیں کرتے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی ابلاغ نہیں کرتے, دوسروں تک یہ پیغام نہیں پہنچاتے, اور ایک درجہ کیا ہے کہ اس قرآن کو شفا کا ذریعہ نہیں سمجھتے. آج دیکھیے ڈاکٹرز کے پاس کتنی لائنیں ہیں, ہاسپٹلز کتنے ہیں, ویٹنگ لسٹیں کتنی لمبی ہیں آپریشنز کے لیے. یہ قرآن آپ کے میرے لیے شفا ہے, شفا لما فی الصدور. تو قرآن کو پکڑ کر چھوڑنا کہہ کے قرآن کا نام تو لینا, لیکن اس کے احکامات کو پاؤں تلے روندا. قرآن نیچے گر جائے تو اٹھا کر اتنے وزن کا آٹا تول کے وزن دیتے ہیں, اور عملی طور پر اسی قرآن کے حکموں کو پیچھے ڈالتے ہیں. قرآن کا نسخہ سر پہ اور قرآن کے حکم پاؤں کے نیچے, پوری شادی قرآن کا مذاق, اور آخر پہ دلہن کے لیے ٹھہرو ٹھہرو قرآن لے آؤ. یہ ہے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یاد رکھیے قرآن تو ایک مینول آف ریولیوشن ہے, آپ کی میری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. ایک امت ہونے کے ناطے, ایک فرد ہونے کے ناطے, اصل بات یہ ہے کہ آپ کو مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کے قابل کر دے. اور اللہ کے نبی سے یہی دشمنی تھی ان لوگوں کی کہ یہ قرآن ہمارے لائف سٹائل پہ چینج کیوں لاتا ہے, اس لیے ہم اس کو پسند نہیں کریں گے. تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. اے نبی, ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا, اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. کیا کرو, جب شک کریں, کوئی بات کریں آپ کے اوپر, تو آپ اللہ سے مدد مانگیں. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. ہاں, ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں, اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے, اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. جو لوگ اوندے مو جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں, ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راحت درجہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کتاب کو ماننے والوں میں شامل کریں, اس طرح کی منہ ماری کرنے والوں میں شامل نہ کریں. دیکھیے, کل لوگ زندہ نبی کے سامنے جا کر یہ باتیں کرتے تھے, آج لوگ نبی کی حدیثوں پہ باتیں کرتے ہیں. انکار حدیث کو بھی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا میں لاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں جو قرآن کو مانے اور حدیث کو چھوڑ دے, اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا, کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو کیسے سمجھیں گے. اور آج کے دور کا بہت ماڈرن فتنہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. اب آگے حضرت موسیٰ اور ہارون کی تھوڑی سی بات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا. کیا پتا چلا, نبیوں کو بھی مددگار چاہیے ہوتے ہیں, اور جس کو گھر کے افراد میں سے کوئی مددگار مل جائے, سونے پہ سہاگا. چلیے دعا کرتے ہیں, پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا 16ویں پارے میں, وَجَلِّ وَزِيرَ مِنْ أَهْلِي. اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا بوجھ اٹھانے والا, میرا مددگار کر دے. آپ بھی اپنے بچوں, اپنے شوہروں کی نیت کر کے دعا کریں, بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی, جو جدھر رہتے ہیں نا, ابھی اس وقت بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دین میں ہمارا مددگار کر دے. یقین کریں, جب گھر کے سب لوگ ایک رخ پہ چلتے ہیں نا, پھر گاڑی دوڑتی ہے. آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہوں, دو لوگوں کا منہ ادھر تو دو کا ادھر, بیک پہ کدھر جائے گی گاڑی, رسہ کشی ہوگی. وہ ادھر چلائے گا تو یہ دھکا مار کے ادھر کر لے گا, ادھر ادھر ہی چلتے رہیں گے. شروع شروع میں دین کی گاڑیاں گھروں میں ایسے ہی چلتی ہیں, خاص طور پہ وہ دور جب دین بالکل رسمی دین میں بھردل چکا ہو. شروع میں دین کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہوں گے, کیا مسئلہ, ये क्या नई बात है, अब फिर तनकीद, ये भी वो भी, अब हम क्या करें? बस उनका रुख मोड़े, मुझे आपके बगैर मजा नहीं आता, मुझे आपसे डिस्कस करना है, मेरी वजह से सुने, मेरे साथ बैठे। आप देखिए, कभी आप किसी को खाना पेश करें, मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है, आप कहते खा लो ना, दूसरी से तीसरी बार कहेंगे ना तो उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि एक बंदा भूख ही नहीं, खा नहीं चाह रहा और आप खिला रहे हैं, क्या करें? आपके बस मेरे साथ बैठ जाए, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी। अब गरम गरम रोटी उतरती हुई आ गई और खुशबूदार खाना, आप खाएं, थोड़ी देर में पता क्या होगा, वो भी आपके साथ लुकमा तोड़ने शुरू कर देंगे। लोगों को चखाएं, चखे तो सही बेटा, तुमने अभी तक ये चखा ही नहीं है, वो चीज जिसने तुम्हारी मॉम को क्रेजी मॉम बना दिया ना, तुमने भी चखी नहीं, बनो तुम भी क्रेजी हो जाओगे, और आजकल का तो फैशन है टू बी क्रेजी। चखाएं, साथ लेकर चले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा। और इनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयत को झुटला दिया, आखिरकार इन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया, यही हाल कौम नूह का हुआ, जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की, हमने इनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशान इबरत बना दिया, और इन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाबुर रस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए, इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें देकर समझाया, और आखिर कार हर एक को गारत कर दिया गया, और इस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई, कौमे लूत की तरफ इशारा, क्या उन्होंने इनका हाल ना देखा होगा, मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते, ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। वापिस आ गई देखिए सूरत की थीम, नबी का मजाक, नबी के साथ बहस, ये क्यों ये दीन ला रहा है, ये क्यों ये कुरान ला रहा है, अल्लाह कहते हैं आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं क्या ये वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से ही बदगुमान कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जम न गए होते। इसको भी हाईलाइट करें, यानी इसने तो हमें साबी बना लिया होता अगर हम पक्के ना होते अपने अकीदे में। अच्छा, वो दुबक दूर नहीं जब अजाब देखकर इनको खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर तक निकल गया। अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफअन्ता तकूनु अलैहि वकीला, ये भी खूबसूरत आयत है, इसको हाईलाइट कीजिए। कभी तुमने इस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राह रास्त पर लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। यहां देखिए ख्वाहिश नफ्स की बात हुई है, यहां सवाल पैदा होता है अपनी ख्वाहिश को इलाह बनाने से क्या मुराद है? पहली बात यह है, इस कुरान को सुन्नत से काटो और अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश से जोड़ो। आज बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के क्यों भटक जाते हैं? वो कुरान को ख्वाहिशों की रोशनी में देखते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। रिसेंटली आपने भी सुनी होंगी बातें, किसी नॉन मुस्लिम मुल्क के सरबराह ने किसी मुस्लिम मुल्क में जाकर ये खुतबा दिया है, क्या हो तुम्हें बताएं कि कुरान में क्या होना चाहिए? अल्लाह हम सबको आने वाले वक्त की सख्तियों से बचाए, ये चीजें बाय फोर्स भी मनवाई जाएंगी बाद में। जब कुरान को ख्वाहिशों के पैमाने पे परखेंगे ना, तो याद रखिए ख्वाहिश नफ्स जरूर आ गई और सुन्नत चली गई। फिर आप देखिए कि ख्वाहिशों की पैरवी क्या है, कि सिर्फ वो चीजें कुरान की रखो जो आपके स्टाइल ऑफ लिविंग और सोर्स ऑफ इनकम और आपके कारोबार के ऊपर हर्फ ना डालें। आप देख लीजिए आज यही हो रहा है, और आप जरा से सोचिए कि शैतान इबलीस क्यों बना, शैतान किस बात पे रांधा दरगाह हुआ? ख्वाहिश थी उसकी, अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। तो याद रखिए इस जमीन पर सबसे बड़ा बुत जो पूजा जाता है वो इंसान का नफ्स है, मुझको पूजो, अंदर से सार उठाते। फिरौन ने तो जिंदगी में कोई दो चार बार कहा होगा ना अना रब्बुकुम अलाला, हमारा नफ्स दिन में शायद 10 दफा उठ के बोलते हैं अना रब्बुकुम अलाला। कैसे पता चले कि क्या मैंने अपने नफ्स को खुदा बनाया? सीधा सा जवाब है, फजर की अजान सुन के उठ जाते हैं, अस्सलातु खैरु मिनन नौम, और नफ्स को दबा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपका नफ्स खुदा नहीं है, आपने अल्लाह की बात को बड़ा माना। 5 नमाजों का वक्त पैदा कर लेना इस बात की दलील है कि आपने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की बात को मान लिया, लेकिन इसका ऑपोजिट है कोई नमाज सोने में गई, तो कोई जॉब पे गई, तो कोई खाने में गई, तो कोई नहाने में गई। कुछ लोग तो ऐसा नहाते हैं कि जिंदगी का आखिरी नहाना है। मगरब भी गई, किधर है वो नहा रही है, भी निकाल लें पहले नमाज पढ़ लें फिर जाने दें अंदर। ये सब ख्वाहिश परस्ती है, पता नहीं खोरच रहे हैं करते क्या, अंदर स्क्रब कर रहे हैं, नाखून रगड़ रहे हैं, कर रहे हैं। अरे तो मन इतखा इलाह हो। आज दुनिया को जरा देखिए, कभी किसी मॉल के उस हिस्से से गुजरिए जहां जिस्मानी आराइश और जिबाइश का सामान है। मन इतखा इलाह, ये जमीन से 5 फुट का जिस्म है, इसको कूच रहे हैं, मांज रहे हैं, रगड़ रहे हैं, दबा रहे हैं, सारी चीजें इस नफ्स की राहत की हैं। और वो जो अंदर रूह थी अल्लाह की तरफ से दी हुई, उसकी चीखें नहीं किसी को मिलती। भूखी है रूह, तभी तो ऊंची आवाजों में म्यूजिक सुनकर अपनी रूह की उन चीखों पुकार को बंद करते हैं। याद रखिए, इस नफ्स को दबाना पड़ेगा अगर आगे चलना है। फिर आप देखिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी धमकी दी है, ये तो जानवरों से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि जानवर शिर्क नहीं करते। जानवर जानवर है तो ठीक है, यानी कुत्ता कुत्ता हो तो ठीक है, इंसान जब कुत्ता बने तो वो ख्वाहिश का कुत्ता बन जाता है। आप देखिए कुत्ता कितना वफादार है, उसको हड्डी दे दो वो भी मानता है। इंसान कितना बुरा है, जिसका खाता है जिसकी मानता है उसी की बात को नहीं सुनता। और ये तो जानदार चीजों की बात थी, अब आगे बेजान चीजों के अल्लाह के आगे झुकने की बात देखिएगा। अलम तर इला रब्बी का कैफ मद्दज़िल, क्या तुमने देखा नहीं तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो इसे दायमी साया बना देता। हमने सूरज को इस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम इस साये को रफ्तार रफ्तार अपनी तरफ समेटे जाते हैं। साया जमीन पर गिरता है, कोई साया कहता नहीं मैं जमीन पे नहीं गिरूंगा मैं ऊपर जाऊंगा। और आप देखेंगे सूरह फुरकान में दो चीजों का तकाबुल, हक और बातिल, कड़वा मीठा। क्यों? इसलिए कि फुरकान होता ही वो है कि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आने लगे। अब ये आयत देखिए कैसी है, सूरज के इधर उधर गिरने की बात है और लोगों ने इसको वजीफे में ढाल दिया। एक बच्ची ने मुझे एक आयत का टुकड़ा दिखाया कि मुझे किसी ने कहा है कि इसको पढ़ोगी तो जिधर तुम चाहती हो तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये भी जुल्म की बात, क्या पढ़ा? ये आयत थी। और अंदर लिखा कि सुम्मा कबज ना हो इलाई ना कब्जन जसीरा, कि वो लड़का तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ये मिलता है कुरान से, जब किताब ख्वाहिशों का नजरिया बनती है। वक्त नहीं है ना हमारे पास इसको देने को, हम इस किताब की खिदमत कर ही नहीं सकते, मसरूफ ही बहुत है, दुनिया की पढ़ाई बहुत है। जरा से खुद से पूछें हम, क्या हमने अभी कम अज कम लीस्ट मिनिमम, और वो क्या कि इस कुरान के तर्जमे को समझे? बाकी बातें तो बाद की बात है। तो ये उसी माशरे में ये जरूरत होती है जहां पता है सारे ही निकम्मे हैं, इन्होंने अपनी मर्जी की बातें करनी है। ऐसी ऐसी तहरीफात लोगों ने कुरान के साथ की हैं, अल्लाह की पनाह। इस साल का एक नया वजीफा ईजाद हुआ है, सूरत का नाम लेके बताऊंगी तो आप में से कई शुरू ही हो जाएंगे। वल्लाही मैंने अपनी इतने सालों की जिंदगी में कभी ये वजीफा नहीं सुना था जो इस साल लोगों ने भेजा है, और वो क्या है कि प्यास नहीं लगेगी आपको रोजा रख के। वादा करें नहीं पढ़ेंगे? वादा करते हैं, चले मैं तादाद नहीं बताती, ऐसे ही उल्टा ही ना पढ़ जाए वजीफा। सूरत कौसर इतनी दफा पढ़ के फजर के नमाज के बाद बैठे और भूखे सारा दिन रोजे में प्यास नहीं लगेगी। और सूरत कौसर क्यों? इन्ना तैना कल कौसर, उसमें पानी का चश्मा है कौसर का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह हमें कुरान के साथ ये मजाक करने से बचाए। यकीन करें इस सूरत और इस पूरे पारे में आप देखेंगे कुरान के साथ लोगों का जो मजाक है वो दिखाया जा रहा है, और आखिर में भी देखिएगा कि हमें क्या जिम्मेदारी सिखाई जा रही है। दुआ करें अल्लाह इस किताब के पैगाम को आम करने वालों में हमारा नाम लिख दे। ये जहालतों के और ख्वाहिशों के भरे हुए दीन के नुमाइंदे अल्लाह इन तक दीन का सही पैगाम पहुंच जाए। और मैं सोचती हूँ कहाँ बैठ कर ये वजीफे बनते हैं। देखिए बेवकूफ लोग तो ये नहीं वजीफा बना सकते, आखिर उनको पता है ना कि कौसर नाम का एक चश्मा है अल्लाह के नबी के हाथ से, वहां लोग पानी पियेंगे, ये जन्नत की नहर से निकलता है। और कितनी प्यारी है कौसर की तफसीलात, तो उन्होंने इसको रोजे की आयतों से जोड़ लिया। और जिसने ये लड़कों को कब्जा करने के लिए ये आयत बनाई होगी, कब्जे का लफ्ज का मतलब तो आता है ना कि इसको कब्जे में कर लो। और वो पीछे आपको सूरत आहा में सुनाई थी, अलकई तो अलई का मोहब्बत मिन्नी, मूसा के जीवन में थी। अल्लाह करे आपको आयत का नंबर ना ही याद हो, किसी ने कहा कि मुझे किसी ने दिया ये पढ़ो, तुम्हारा मियाँ तुम्हारी मोहब्बत में खिंचाएगा, क्योंकि अल्लाह ने डाल दी उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत। मैं कहती हूँ कभी किसी ने ये वजीफा किया कि कोई ऐसा वजीफा दो कि मुझे कुरान पढ़ने का शौक लग जाए, कोई ऐसा वजीफा दो कि मुझे यामे 20 के 3 रोजे हर महीने रखने का शौक लग जाए। ये वजीफे क्यों नहीं बनते? सिर्फ इसलिए आराई तमने तहज़ इलाहु हवाहु, अल्लाह हमें हिदायत दे दे। अम तक सबुन अक्सर हम यसमाउन, देखिए अल्लाह सवाल भी फिर इसी तरह उठाते हैं, यानी इसमें आप कर सकते हैं कोट, क्या तुम ये सोचते हो कि ये सुनते हैं या समझते हैं, यानी अक्सर लोग ना सुनते हैं ना समझते हैं ना कुछ। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों की हिदायत का जरिया बना दे। वहु अल्लज़ी अरसल रियाह बुश्रुम बैन यदै रहमती, वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बिशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को इसके जरिए से जिंदगी बख्शे, और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक लें। क्या सबक है इसमें? वही सबक है कि जैसे इधर उधर से खींच तैंच के चीजें मुर्दा जमीन की तरफ लाता है, इसी तरह अल्लाह ताला कुरान के नुस्खों को, कुरान के इल्म को भी इधर उधर से लाकर जमा कर कर इंसान तक पहुंचाते हैं। क्यों? ताकि लोग उससे नसीहत लें। मगर अक्सर लोग कुफर और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया अख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह हमें इनकार वालों में ना कर दे। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक खबरदार करने वाला उठा देते, यानी हर जगह से एक नबी खड़ा हो जाता। पस ए नबी, काफिरों की बात हरगिज़ ना मानो और कुरान को लेकर इनके साथ ज़बरदस्त जिहाद करो। ये है असल में पारे की सेंट्रल और थीम आयत और हमारे गौर व फिक्र की आयत, और वो क्या है? वजाहिद हम भी जिहादन कबीरा, इस कुरान के साथ बड़ा जिहाद करो। ये किस जिहाद की बात है? याद रखिए कि लफ्ज़ जिहाद के साथ ही तीर तलवार जहन में आते हैं, और मैंने कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ जान के बोला ताकि आप इस दौरे कुरान के बाद यकीन से ये कह सकें कि जिहाद तलवार उठाने से नहीं, कलम उठाने से होता है। थोड़ी सी हम बात देखेंगे कि कुरान के जरिए जिहाद कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे जहन में हमेशा हथियार का लफ्ज़ आता है ना जिहाद के साथ, तो कुरान को जिहाद के साथ कैसे है और वो क्या है कि इस कुरान को लेकर बाहर निकलो। सबसे पहले अमली जिहाद तो शुरू तब हो जाता है जब ये कुरान आपकी जिंदगी में आता है। आप कुरान सीखने के लिए निकले, अभी तो आप 1 महीने के लिए निकले हैं ना, सारे खुश हैं जाओ, और ना अभी किसी को गरम गरम रोटी की उम्मीद थी कि आप घर में रहेंगी तो रोटी मिलेगी, और ना सब्ज़ चटनी और सुरख अचार और गरम गरम भिंडियाँ, नहीं, अभी आप सब शौक से आ रहे हैं। आपका जिहाद उस दिन शुरू होना है जब रमजान के बाद कोई कोर्स ऑफर होना है और आपने उसमें आना है। अभी से ना डर जाए। सबसे पहले ये स्ट्रगल इंसान के अपनी जात से शुरू होती है, मैंने ये काम करना है, ये करना है, और जब इसका सिलसिला रोका ना जाए ना तो किताल तक बात जाती है। याद रखिए कि सूरत फुरकान है हक और बातिल की कशमकश, किसी भी सोसाइटी में कुरान सीखने से आती है। आप सब कुरान पढ़ते रहे, माशाल्लाह आप जितने लोग हैं आप मुझे बताइए, हम तकरीबन 2.5-2.5 घंटे यहाँ बैठते हैं, ब्रेक ना लगा सब कुछ मिला ले 3 घंटे, क्या हम यहाँ से रोज 100 कुरान ना लेकर उठे? उठ सकते हैं? आप पढ़ें 20-20 मिनट में एक एक सपारा, आप में से एक एक सिस्टर 5-5, 10-10, 6-6 सपारे पढ़ जाएगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। लिखिए, सबसे पहली कश्मकश शुरू होती है जब आप कुरान सीखना चाहते हैं। कई लोग हरकत में आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये आवाजें उठती हैं, ये क्यों पढ़ रही हैं, ये कैसे चल रही हैं। चलिए, सीखने से शुरू हुई, थोड़ा आगे चलिए, आप अब सीखे हुए पे अमल करेंगे तो एक और मुखालफत, पूरे खानदान का झाग उठेगा, ये कैसी बहू आ गई घर में, इसने ये बंटवारे डाल दिए, ये ऐसी हो गई, ये वैसी हो गई, ये हुआ। आप घर में बैठे कोई मुखालफत नहीं, आप बैठ के 500 दाने की तस्बीह पढ़ते रहे, अस्तगफर अस्तगफर अस्तगफर, साथ गीबतें भी करते रहे, कोई इतराज़ नहीं करेगा आपके ऊपर। एतराज़ कब होता है? जब आप इस कुरान की तालीम को आम करते हैं। उलमाए कराम कहते हैं जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा, पहली बात तो देखिए ही कुरान, ये कुरान सीधी सी तफसीर है इसकी, और जिहादन कबीरा बड़ा जिहाद करो। कहते हैं दुश्मन से मुकाबला करना ये छोटा जिहाद है, कुरान को आम करना ये बड़ा जिहाद है, क्योंकि मुआशरे के अंधेरों से लड़ना ये कोई छोटा काम है, कुरान के चिरागों को लेकर निकलेंगे ये जिहाद का काम होगा। सोई हुई उम्मत इस वक्त सोना चाहती है, आप इस कुरान की रोशनाइयाँ उनके घरों में ले जाएं, आंखें जो दियाएंगी थोड़ा सा शोर करेंगे, लेकिन आपको ये काम करते ही रहना है, क्योंकि इन चिरागों को जलाने के अंदर भी मेहनत है और इनको जलता रखना भी मेहनत वाला काम है। मुखालफतें, लोगों को अच्छा नहीं लगता, वजह क्या है? इसलिए कि कुरान की हर दूसरी आयत तो कहीं बंदे की अपनी जात के खिलाफ पढ़ रही है, کوئی اس کے خاندان کے کسی رسم کے خلاف ہے؟ سچ بتائیں آپ نے یہ 18 پارے جو پڑھ لی ہیں اللہ کے حکم سے، کتنی دفعہ آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ میری باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں لگتا؟ اور آپ میں سے ہر ایک کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ سارا میرے لیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ ریکارڈنگ اگر اگلے سالوں میں کہیں جا کے کچھ چلائے گا نا اللہ نے چاہا تو، تو وہاں بیٹھے سب کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ انہوں نے مجھے کہا، حالانکہ میں تو ادھر ہوں بھی نہیں. یہ قرآن کا ایک امتیاز ہے، مجھے بتاتے ہوئے لگ رہا ہوتا ہے یہ میں اپنی بات کر رہی ہوں. یہ کرائیٹیرین ہے. تو جب ہر بات آپ کے اپنے خلاف آتی ہے، اور کون ہے جو اپنی برائیاں سننا پسند کرے؟ کس کو اچھی لگتے ہیں اپنے عیب سننے؟ قرآن عیب سناتا ہے، باتیں سناتا ہے، اور خاص طور پہ جب چوٹ پڑتی ہے کہ اب اس کو چھوڑو. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں چھری تھی، آپ نے اسے چھیننے کی کوشش کی، وہ پڑھے ہو گیا. وہ کھیل کے جوش میں، آپ کہتے ہیں پڑھو، وہ کھانا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں تم سو جاؤ. تو جس طرح بچہ ریئیکٹ کرتا ہے اور روتا ہے اور پاؤں مسلتا ہے نا، اسی طرح یاد رکھیے اس قرآن کی تعلیم کے اوپر ایسی باطل چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ 100 نیکیاں کرانا آسان ہے ایک گناہ چھڑانے کی نسبت. لکھ لیں یہ جم، 100 نیکیاں کرانا آسان، ایک نیکی مشکل. آپ کہیں لیلت القدر کی رات میں 100 نفل پڑھو، لوگ کہیں گے بڑی اچھی، آپ کو دبائیں گے، بڑا اچھا مسئلہ بتایا. آپ کہیں ذرا ایک غیبت چھوڑ دو، اس پہ ناراض ہوں گے، اس پہ فرکشن پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر یہ سب کچھ آتا ہے. تو لہٰذا یہ کام جس سے اللہ نے کرا لیا کرا لیا، گناہوں کی چھڑیاں چھڑانا بہت مشکل ہے. اور یہ ساری کشمکش جہاد کی ہے. آپ دیکھیے 40 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کوئی دشمن نہیں دیکھا تھا، آنکھوں کے تارے تھے، صادق اور امین تھے، ایپل آف دا آئی تھے. حلف الفضول نام کے ایک معاہدے میں آپ کو بڑا بنایا گیا، حضرت اسود کے تنصیب پہ آپ کو بڑا بنایا گیا، سب خوبیاں تھیں. جس دن اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں اتریں، اس دن آ کے کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ کیا تو نے ہمیں ان باتوں کے لیے بلایا تھا؟ تو لکھ لیں، جو شخص یہ کتاب لے کر معاشرے میں نکلے گا تو اختلاف ہوگا، شور اٹھے گا، باتیں سننی پڑیں گی. تو جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، ایسے وقت میں کوئی دوسری چیز نہیں کہنی، کسی ادھر ادھر کے سائیڈ ایشو میں نہیں الجھانا، بلکہ قرآن ہی کے ذریعے اس کا علاج ہوگا، اس دین کو لے کے چلنا ہے. اب یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، سیدھا سا بات ہے، ایک بندہ اکیلے سے لڑ لے گا، 10 سے نہیں لڑے گا. اس کے لیے پھر ٹیم ورک، پھر اس کے لیے اجتماعیت، پھر اس کے لیے امت بننا پڑتا ہے. اور ایک ایسی ٹیم جو اس معاشرے کو خوب جانتی ہو، وہاں کی خرابیاں، وہاں کی کمیاں، ان کے لیول پہ جا کے بات کریں. پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھے لکھوں میں جا کے تبلیغ کرنی چاہیے، انگلش بولنے والوں کو انگلش بولنے والوں کو یہ قرآن سکھانا ہے، فرینچ بولنے والوں کو فرینچ بولنے والوں کو. پھر کاروباری لوگوں میں سے کوئی کاروباری مرد اٹھے کہ جس کو ان کی مثالیں دینی آتی ہوں، گھریلو خواتین کو ہم جیسی گھریلو خواتین کے ذریعے سے بات کرنی ہے. یعنی معاشرے کی، وہ کہتے ہیں نا کہ جو گراس روٹ ہے نا، جڑوں تک قرآن کا پانی پہنچانا ہے، پھر مزہ آئے گا، پھر پہنچے گا. پھر ایک اور بھی اس کی ضروری بات ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جہاد کبیر کب ہوگا؟ جب احساس کمتری سے اوپر اٹھ کے اس کو فخر کے ساتھ اٹھانے والے ہاتھ ہوں گے. وی آر سوری ٹو بی مسلم، ہم مولوی ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. نہیں، ایسے لوگ جہاد کبیر نہیں کرتے. یعنی وہ لوگ جو مسلم ہوں اور مسلم لگے، سیدھی سی بات ہے، مسلم ہوں اور مسلم لگیں، وہ یہ جہاد کبیر کر سکتے ہیں. باقی تو پتہ نہیں اس میں سے کیا ہوگا. تو آج کا بہت بڑا جہاد ہے کہ مسلمانوں میں سے شرمندگی کا احساس نکالا جائے، ٹیک آؤٹ، پھینکو اس کو، وی آر سوری ٹو بی مسلم. نہیں، اور اس کے لیے آپ کو سکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ٹین ایجرز کو فوکس کرنا پڑے گا. یہ وہ کام ہے جو آسانی سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے. اور یاد رکھیے کہ دین کو پروفیشن تو نہیں بنانا، پر اس کو پروفیشنلی کرنا ہے. کیوں؟ کتنے سٹل طریقے سے لوگ آج گناہ کی رغبت دلاتے ہیں. آپ دیکھیے ایک فلم بنتی ہے، اس کے لیے پکچرائزیشن کرنے میں کتنی محنت وہ کرتے ہیں، نیچرل لگے، ریئلسٹک ہو، کروڑوں روپیہ لگتا ہے، پھر ایک فلم بنتی ہے. دنیا کا کوئی کام دیکھیے، آپ ملک میں، دنیا میں، آپ کے ماشاء اللہ ارد گرد بہت سارے کام ہوں گے سوشل ورک کے نام پہ، بہترین طریقے سے کرتے ہیں، بڑی بڑی جگہیں لیتے ہیں، بڑے بڑے ان کے ہالز ہوتے ہیں، وہ پروفیشنلز بن کے لوگوں کو بات کرتے ہیں. آپ کو مجھے اس دین کا حق دلانا ہے، اس کو پھٹی ہوئی کرسیوں اور پھٹی ہوئی ٹاٹ والی چٹائیوں سے اور ٹوٹی ہوئی کرسیوں سے اٹھا کر آرام دہ کرسیوں پہ لے کے جانا پڑے گا. وجہ کیا ہے کہ اب دنیا میں اکثریت آرام کوش ہو گئی، जो घर में टूटी कुर्सी ना रखें उनको टूटी कुर्सी पे बैठकर आप ये पारा पढ़ाएं, वो उनका जहन बंद हो जाएगा। ये मैं उनकी हिमायत कर रही हूं। कोई टूटी कुर्सी पे बैठने वाला नेक नहीं है और सोफे पे बैठ के दीन सीखने वाला कोई गुनाहगार नहीं है। जिस तरह के लोग हैं उनके साथ वैसा करो। उनजिलो नास मैं नाजिला हूं। अल्लाह ताला ये चाहता है ये किताब आम हो। देखिए आज एक सोच है, बस एक खास तबका दीन सीख सकता है। चंद ही लोग हैं वो दाढ़ी रख लेंगे, आटे में नमक के बराबर औरतें पर्दा कर लेंगी, मर्द टखनों से ऊंची शलवार पहन लेंगे। अब आप देखिए कि जब आप लोगों को बिल्कुल उन जैसे बनकर दिखाते हैं वो बैठते हैं। कभी आपने कोई साइंस के मौजू पे कोई ना कोई सेमिनार अटेंड किया होगा, वो पूरा माहौल साइंटिफिक बनाते हैं, आपको बड़ी बड़ी स्क्रीन पे चीज़ें दिखाते हैं, ये है वो है। बिल्कुल यही करना पड़ेगा। इस दीन को इज्जत दीजिए, इस दीन की रिस्पेक्ट कीजिए, आप इसको पेश कीजिए, फिर आप देखें। आप देखिए लोग कार्टून देखते हैं बच्चे समझ के देख के, नावल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं समझ के पढ़ते हैं, और कुरान को कैसे पढ़ते हैं। आखिरी दिन लोग जाएंगे कहेंगे चलो दुआ मिल जाए, अम्मा पारा से शुरू करेंगे। शुरू से ज़्यादा हमें ख़त्म का शौक होता है। वजह, इसकी वजह यह है कि ये किताब समझ नहीं आती। सेल का साइन हो तो पहले दिन, और कुरान का साइन हो तो आखिरी दिन। फिर एक छोटा सा एंगल, मैं चाहती हूँ कि हम इसी पे पूरे पारे को पूरा कर लें, क्योंकि सब कुछ इसमें, इसके आगे तो पूरा मूसा और हारून का किस्सा और मुख्तलिफ अंबिया की स्टोरीज हैं। वजह क्या है, आपको मुझे सबसे पहले किससे लड़ना है। मैंने अभी इधर ही आकर जो पहला दर्स दिया था ना इस ट्रिप में, जो तकमील थी, आप लोगों में से जो लोग आए होंगे उसमें कोई कोर्स की तकमील थी, मैंने उसमें 5 पॉइंट्स दिए थे। असल में वो इसी आयत पे दिए थे कि जब आप कुरान लेकर चलते हैं तो आप मुआशरे में से क्या क्या निकालना है। अगर मौका मिला तो आप उसको भी सुन सकते हैं, लेकिन अब इन शॉर्ट कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले लिखिए अंदरूनी जिहाद। आपको पहले मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा। पीछे ही अल्लाह ने आयत दे दी, आरई तमन तखज़ इलाहहु हवाहु। और याद रखिए ये आसान काम नहीं है। खुद को मुसलमान समझना, खुद को इस्लाम पर फख्र महसूस करके दूसरों के सामने पेश करना, और जो कटे हुए दिखते हैं इस दीन से उनको इससे जोड़ना। फिर दूसरी बात, ख्वाहिशात से जिहाद करना पड़ेगा। कई आपकी मेरी ख्वाहिशें ऐसी होंगी अब कुरान पढ़ के वो नहीं चलेंगी, कई कपड़े हमें अपने फेंकने पड़ेंगे, ऑल्टर करने पड़ेंगे, करेंगे हम इंशाल्लाह। हमें कई खाने की चीज़ों से हाथ उठाने पड़ेंगे क्योंकि अब उसके अंदर कोई शक आ गया, इसको छोड़ दीजिए। फिर तीसरी चीज़, शैतान से जिहाद करना पड़ेगा। आप देखिए शैतान इसको इतना बोझल बना देता है कि हम इसको सुनते पढ़ते बताते हुए अपने आप को परेशान करते हैं। फिर अगली बात, बिगड़े हुए मुआशरे से जिहाद करना पड़ेगा, उनसे शिर्क छुड़ाना पड़ेगा। आम तौर पे ये कम पढ़े लिखे लोगों के अंदर होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह को जवाब क्या देंगे क़यामत के दिन, अगर हमने दुनिया से सिर्फ शिर्क को छुड़ाने की बात ना की। और उसके बाद फिर आज का जो सबसे बड़ा जिहाद है ना, वो इंटेलेक्चुअल लोगों से जिहाद है। पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े बड़े शो बिजनेस में वो लोग आपको दिखेंगे जो मुंह खोल खोल कर कुरान और हदीस के खिलाफ बातें करते दिखते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये शकूक व शुबहात दिलों से निकाल दें। ये आपके मेरे लिए ज़रूरी है, और इसके लिए आपको मुझे मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कल कुछ लोग बात में बैठे हुए थे और पूछ रहे थे कि आप लोगों ने ये सारा काम सिलसिला दीन का कैसे शुरू किया, कहाँ से। अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ जाओ फलां आडियो सुन लो, उसमें मैंने बताया हुआ। लेकिन मैं इस आयत पे आकर हमेशा सोचती हूँ कि वाकई अगर इतने प्यारे साथी साथ ना मिलते तो ये काम कभी ना होता। इसी आयत की रोशनी में हम अगला हिस्सा पढ़ते हैं और इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आप अपने लिए यहाँ कोई ना कोई मेयार मुकर्रर करें, गिव अप करती हूँ, हैंड्स अप करती हूँ, या फिर शेक हैंड करती हूँ। आप याद रखिए कि जिस जगह के लोग ये सोच लेते हैं ना, जिस जगह के लोग ये सोच लेते हैं कि हमने इस सोसाइटी को कुरान का पानी देना होता है, उस जगह के नसीब बदल जाते हैं, नसीब बदल जाते हैं। हर साल का दौरे कुरान एक क्राइटेरियन होता है। जिधर भी दीन का काम इस वक्त थोड़ा बहुत नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, उसकी दाग बेल रमज़ान के दौरे कुरान में पड़ी थी। कल मुझसे कोई पूछ रहा था, सुना रहे थे, तो कहाँ हुआ नॉर्वे में आप कैसे आ गई। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं अमेरिका से आप नॉर्वे कैसे आ गई। कईयों को आज तक इस सवाल का जवाब भी नहीं समझ आया। जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, वहीं क्यों भाग भाग के जाती हैं। बहुत वक्त दे दिया आपने उनको, मैं कहती हूँ मुझे वहाँ का स्कूल लेकर जाता है। आपको उनका क्यों दर्द है? इसलिए कि वहां मेरी जिम्मेदारी है। आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले मेरी जिंदगी में ये नाम भी मुझे नहीं पता होगा करीब से, लेकिन जहां गए साथियों ने साथ दिया, मेहनतें की, कोशिशें की, अल्लाह ने हाथ थाम लिया। आपका मेरा काम सिर्फ नियत करना है। यहां बैठ के आज आप नियत करें कि हमने फ्रांस में जिहादे कबीर करना है इस कुरान के साथ, और अल्लाह हमें इसका हिस्सा बना ले। मैं चली जाऊंगी, अल्लाह आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, ये याद रखिए। ये आपने मैंने तड़पना, और वल्लाह ही आने वाली नस्लों के लिए ये काम हमें करना पड़ेगा। इधर ही पोते नवासों और उनकी नस्लों ने पलना है अगर हमने अपने बच्चों को इधर ही पाला है तो। लेकिन हमें छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उस चीज़ की इसलाह की ज़रूरत है। तो दुआ करें कि बस अल्लाह ताला हमें ज़ाया होने से बचा ले।